أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. صلاح اے ٹو زی یعنی نماز نووی. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کا ڈے 3 شروع کریں گے. کل جو باتیں کی تھیں اس کے بعد تو دل میں اور محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو خوبصورت بنا دے. ایک دعا کے ساتھ شروع کریں گے. ہمیشہ ہی آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ رکھا کریں کہ میرے مالک مجھے دعاؤں کے ذریعے اپنی کوششوں کی کمی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 103 سے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور وہ کیا ابھی اس کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اور جب تم پوری کر چکو نماز یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو. قیامن قیام کی حالت میں مراد کے کھڑے ہوتے ہوئے. وَقْعُودًا اور بیٹھے ہوئے. اور کبھی تو وہ عَلَى جُنُوبِكُمْ لیٹے ہوئے اپنی کروٹوں میں. ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب اطمینان نصیب ہو جائے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو پوری نماز پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بے شک ہے نماز مومنوں پر. کتابم مقرر کی گئی. موقوتہ وقت کی پابندی کے ساتھ. ایک سٹریچ میں اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا. یہ آیت ہمیں اس بات کی حقیقت دیتی ہے کہ نماز سراسر دعا ہے. اصل میں تو یہ صلاۃ الخوف کے تناظر کی آیتیں ہیں کہ مسلمان کسی جنگ میں ہیں, دشمن سامنے ہے اور وہ مارنے کے ارادے سے آیا ہے. کوئی چھوٹی بات نہیں. کوئی وائرس نہیں ہے کہ جس کا اندیشہ ہے کہ آپ اس کا شکار نہ ہو جائیں. آپ اس دشمن کے وائرس کے سامنے کھڑے ہیں جو آپ کے لیے تلوار اور تیر لے کے کھڑے ہیں. اور نماز کا وقت آ گیا. اور نماز کا وقت آ گیا تو چھوڑنی ہے, نہیں پڑھنی. ہائے ہائے ان حالات میں کون پڑھے اور کیسے پڑھے. اور دشمن تو شکر کرے گا نہیں. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ وہ ایک خاص طریقہ سکھا دیا صلاۃ الخوف کا جو 8-10 مختلف طریقوں کا مجموعہ ہے. وقت اور حالات کے مطابق امام یعنی جو اس وقت بھی امیر لشکر ہیں وہ نماز ادا کروائیں گے اور لوگ یعنی فوجی دو حصوں میں بٹ کر کچھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے, کچھ نماز پڑھیں گے. ایک ہوتی گھو مگو کی لڑائی ہو رہی ہے دست بدستہ, وہ اور چیز ہوتی ہے. یہ خاص طور پہ وہ وقت ہوتا ہے جب فوجی پہلے چل رہے ہوتے ہیں, الرٹ کال پہ ہیں. تو جب نماز پڑھیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے. اب یہ کون سا ذکر ہے؟ اصل میں یہ نہیں ہمیں پتا. نماز پوری کرنے کے بعد ذکر کرنا. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں نماز پوری کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. تو پہلی بات نوٹ کیجئے گا کہ نماز کے بعد اذکار ہیں, دعائیں تو نماز میں مانگی جاتی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جلدی جلدی نماز پوری کرتے ہیں پھر لمبی سی دعا کرتے ہیں. میں اکثر اس چیز کو اس طرح سمجھتی ہوں کہ جیسے کوئی فون کال اٹینڈ کرے, جلدی جلدی بول کر ایک آدھ منٹ میں فون بند کر دے اور اس کے بعد فون بند میں کرنے کے بعد اسی بندے سے خود بخود باتیں شروع ہو جائیں. تو آپ کہیں گے کہ جب فون چل رہا تھا اس وقت بات کرتے, اب تو لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. بالکل اس مثال کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ سے تو ہمارا تعلق ہے ہی, اس کے لیے ہمیں لائن ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم نے اپنا رخ اس کی طرف کیا ہوتا ہے, تو اس میں زیادہ دعائیں مانگا کریں. تشہد کی دعائیں, قیام کی دعائیں, رکوع کی دعائیں. آپ کتابوں میں دیکھیے تو ہر ایکشن کے ساتھ دعائیں ہیں نا. تو نماز دعائیں مانگنے کا ذریعہ ہے. یہ ہے وہ آیت جو یہ بتاتی ہے کہ حالت نماز میں 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے, कैफियत नमाज में रहो। ये फर्ज कुरुल्लाह से लेके आगे तक हिस्सा क्या कहता है, नमाज के अलावा भी अल्लाह को याद रखो। कुछ लोग नमाजी तो बन जाते हैं लेकिन उनकी आम जिंदगी अल्लाह ताला की याद का मजमुआ नहीं दिखती, और ऐसे लगता है कि ये इसमें अल्लाह ताला को याद नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या पता चला कि हर हाल में लेटे बैठे उठते बैठते, क्योंकि बंदा है मोमिन का देहान पूरा वक्त अल्लाह ताला की तरफ रहता है और वो इसको खुशी महसूस करता है। अब ये तो सलातुल खौफ थी ना, अब हालात नॉर्मल हो गए, अपने अपने घरों में आ गए, अपनी जगहों में, अब फिर नमाज पहले की तरह अच्छे इत्मीनान से पढ़ो। तो ये आयत आपको मुझे क्या बताती है कि नमाज बड़ी अहम है। नमाज वक्त की पाबंदी के साथ है, जब वक्त आ जाए तो पढ़नी ही पड़ेगी। खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, जिस हालत में फौरन पढ़े, ये किस्म की रोल कॉल लगवाना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप कहेंगे ये तो हज में करते हैं, वो तो अल्लाह के घर जाके हाजिरी लगवाते हैं ना। नमाज में अल्लाह अकबर कहकर हम अल्लाह ताला को रोल कॉल लगवाते हैं कि अल्लाह आई एम हेयर, आपने हय अला सलाह कहकर पुकारा, मैंने जवाब दिया। अब जो दिन में 5 बारी सोच के साथ जाय नमाज पे खड़ा होगा, तो क्या जब अल्लाह की तरफ से कोई और तकाजा आएगा तो क्या वो बंदा फिर उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ नहीं होगा? तो गोया कि आपने ये समझा कि नमाज बड़ी अहम है, अहमियत है नमाज। और जिस चीज़ की अहमियत यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ दी सलात, हमें जिस चीज़ की जितनी अहमियत पता होती है हम उतना ही उसको अहम समझते हैं। हमें पता है कि लैपटॉप के बगैर हमारा गुजारा नहीं, तो हम चाहे वो महंगा हो के सस्ता हो हम उसको खरीद लेते हैं। इसी तरह खाना खाना है, अहम है ना, सर में दर्द है, कान में दर्द है, जैसा भी हो खाना तो बनाएंगे। तो आइए देखते हैं नमाज की क्या अहमियत है, और अल्लाह ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अहादीस बताई, इंशाअल्लाह ताला हम उनको अपने सामने रखेंगे। तो सबसे पहली हदीस जो हम नमाज की अहमियत पे देखेंगे वो हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से हम तक पहुंची। कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? आपने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने कहा फिर कौन सा? आपने फरमाया माँ बाप के साथ नेक सलूक करना। मैंने कहा फिर कौन सा? आपने फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। ये पहली हदीस, इस अहमियत में बुखारी की रिवायत है ये 527, और सही मुस्लिम में भी 85 नंबर की ये रिवायत है। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई इससे कि नमाज पढ़नी है वक्त के साथ और उसकी अहमियत को महसूस करते हुए। दूसरी बात देखिए कि इस हदीस से ये नहीं पता चलती कि सबसे प्यारा अमल नमाज, वक्त पे पढ़ना, फिर माँ बाप के साथ नेक सलूक, और फिर अल्लाह के रास्ते में जिहाद। कह लीजिए ये तीन कोड वर्ड्स हैं मेरे आपके सामने, किस सोच के साथ कि आप मैं अपनी जिंदगी के बाकी स्केड्यूल्स को इनके इर्द गिर्द रखें। अच्छा थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं। लिखिए अपने आप से, क्या मैं नमाज पढ़ती हूँ? जी, ये पहला सवाल कीजिए। दूसरा सवाल, क्या मैं वक्त पे पढ़ती हूँ? अब इस पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। देखिए नमाज एक पढ़ेंगे ना तो 10 का अजर है, असल में ये 50 थी, टोटल घंटे हैं 24। अगर 24 घंटे के अंदर 50 नमाजें पढ़नी होती तो हर 20 मिनट के बाद आप एक नमाज पढ़ते और रात को उठ उठ के नमाज पढ़ते, और 20 मिनट के लिए एक नमाज पढ़ना का मतलब है पढ़ने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो 15 मिनट अगर आप एक नमाज में लगाते बिलफर्ज, तो बस हर 5 मिनट के बाद आपको एक नमाज पढ़नी पड़ती। आप बोलिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि वक्त नहीं मिलता, तो किसी ने कहा कि फिक्र करो, तुम्हें वक्त नहीं मिलता, तुम्हें अल्लाह वक्त देता नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल से इसकी अहमियत समझाना चाहूंगी, क्योंकि यही मकसद है इस सीरीज को शुरू करने का। आज नमाजें हैं वक्त पे नहीं है, जो बीच में रुख्सत के वक्त थे, जो हम अपनी जगह पे जाके बात करेंगे, नमाजों के औकात हम पढ़ेंगे, लेकिन अमल तो पुख्ता करने के लिए अभी भी हमें पता है कि नमाज का वक्त शुरू हो गया। कितने लोग हैं जो घड़ी देखकर इंतजार कर रहे होते हैं कि नमाज शुरू होने लगी है, मैं वजू कर लूं, और अब शुरू हो गई है, अब मैं 2 नफिल पढ़ लूं, चले जी अल्लाह अकबर। कोई मर्द है वो तो 15 मिनट पहले बैठा होगा गाड़ी में, क्योंकि उसको जाके मस्जिद में नमाज पढ़ने में पहले यकसुई चाहिए। तो नमाजें तो हैं, वक्त पे क्यों नहीं, क्वेश्चन है। और नोट कीजिएगा कि आज मसरूफियत के इस दौर के नाम पे बहुत स्टडीज, पढ़ाई और टू मच सोशलाइजिंग के नाम पे क्या सोचा कि फर्ज नमाज शुरू होने के वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक का जो वक्त है ना, ये ऑप्शनल है। ठीक है, मान लीजिए फिकी बात तो हम कर कोई नहीं रहे, लेकिन इसको एक मिसाल से समझिए। आपको कोई बुलाए, आप सुन रहे हैं, उसको भी पता आप देख रहे हैं, और आप कहते हैं जरूरी तो नहीं ना मैं फौरन ही यस कहूं, जी अम्मी, जी क्या कहा आपने, क्या हम वहां ये सवाल जवाब करेंगे? अभी वक्त है ना अम्मी जी को जवाब देने में, अभी मियां साहब ने एक ही बार पुकारा, हमें उस वक्त घबराहट शुरू हो जाती है। शौहर बुला ले और बीवी आगे से जी ना कहे, अगर माँ बाप बुला लें और आप उनकी बात को सुनकर चुपके से बैठे रहें, आधा घंटा गुजर जाए फिर आपके जी मामा, तो मामा कहेगी कुछ नहीं है, आराम से बैठो, मुझे थोड़ी देर पहले तुम्हें बुलाने का था और बुला, मुझे आपसे चाहिए थी फेवर, अब मैंने काम खुद ही किया। ये तुम्हारी इंसानी कमजोरियां हैं ना, लेकिन आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, अल्लाह को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप पहला वक्त छोड़िए, आप आखिरी वक्त पे भी ना पढ़ें, कौन पूछेगा आपको, लेकिन अदब के खिलाफ है। ये सहूलत है, ये रुख्सत है, लेकिन ये आसन दर्जे का काम नहीं। दुनिया में आपकी निगाहों में जो जितना बड़ा, नंबर एक, फिर जितना बाइज्जत और जितना आपका प्यारा होता है, आप उसकी पहली पुकार पे लब्बाई कहते हैं। छोटी सी मिसाल दूं, एक फोन की बेल बज जाए, फ्री कॉल है, कॉलर आईडी है, व्हाट्सएप कॉल है, पता भी लग जाएगा, आपने करनी है, आप मिला भी लेंगे, आपको भी बिल नहीं आएगा। पहले तो ये होता था ना, बिल पड़ता है, जल्दी से पकड़ लो नहीं तो हमें करना पड़ेगा, अब तो वो भी खत्म हो गया। कितनी बेचैनी होती है, कितने लोग हैं जो पहली बेल पे परेशान हो जाते हैं, किधर से फोन आया, बेचैनी, घबराहट। नमाज में अगर एक बेल बज जाए, अल्लाह की पनाह, बाकी नमाज सारी शिर्क के का शिकार होगी, पता नहीं कौन है, और ऐसे लगता है कहीं जंग लगी और हमें उसका तस्फिया कराना है, और ये है और वो है, बेचैनी होती है। अब आप लिखिए जरा सा, बेल बज रही हो फोन की और आप ना उठाएं तो बेचैनी होती है ना, इस तरह आप शुरू हो जाता है। यही है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस जो वक्त पे नमाज ना पढ़ने की वजह से उन लोगों को होता है जो अच्छे मुस्लिम हैं। अच्छे मुस्लिम का लफ्ज मैंने खुद बोला कि दे केयर कि नमाज का वक्त है, और आपने खुद भी देखा होगा और सुना भी होगा, बेचैनी लग जाती है, नमाज नहीं पढ़ी, नमाज नमाज नमाज, अच्छा भी का नमाज, हाय ये कुर्सियां सही कर लो, हाय नमाज भी पढ़नी है, हाय ये हाय वो, अल्लाह अकबर कबीरा। हम काम समेटते समेटते नमाज को लेट करते हैं, लेकिन दिमाग पे सवार होती है। इसके बरक्स, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अब भी आवाज आई, जी अल्लाह जी, गैर इरादी तौर पे, गैर इख्तियारी तौर पे बोलिए जी। देखिए, क्या ये मुमकिन नहीं था कि आप नमाज की अजान सुनते ही कुदरती तौर पे जाए नमाज की तरफ चल पड़ते? मर्दों के कदम खुद बहुत गाड़ियों की चाबियों को पकड़ने और उसके बाद मस्जिद की तरफ जाने में हरकत में आ जाते, लेकिन ये क्या होता? ये वो तस्बीह और वो इबादत थी जो इस तरारी थी, इख्तियारी ना रही। अल्लाह ने आपको मुझे अपने इख्तियार के साथ आने का हुक्म दिया है, तो जब भी नमाज का वक्त आए अपने लिए अमल की बात कीजिएगा, और मैं हर रोज कोशिश करूंगी ऐसी बातें करूं जिससे आपको मुझे इस चीज का यकीन आए, नमाज वक्त पे है। और यकीन कीजिए, नमाज आपका मेरा टाइम टेबल है, ये आपका मेरा स्केड्यूल है, ये नमाज है जो आपको मुझे बैलेंस्ड इंसान बनाएगी, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि नमाज है जो हमें इंशाअल्लाह ताला डिसिप्लिन करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, हमारे वक्त में बरकत आएगी। क्यों भला, आप इसको सोच सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो उलझे रहते हैं, हर वक्त बेचैन है, दिल में बोझ होता है, वजह यह है कि नमाजों के मुताबिक टाइम नहीं है। आप इस पे इंशाल्लाह हर दिन बात करेंगे, लेकिन आज जो बात करके आगे ले चलती हूँ कि आप ये देखिए कि फजर इतनी जल्दी क्यों होती है। अल्लाह ताला हमारी दुनियावी घड़ी जो होती है ना, सूरज के साथ इसको जोड़ देते, सुबह 9 बजे फजर और 1 बजे जोहर, 4 बजे असर, 6 बजे मगरिब और 8 बजे ईशा, पक्का कर देते इसी को सार पूरा। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। आप देखते हैं कि सूरज के साथ कभी 2 बजे रात फजर है तो कभी सुबह 10 बजे भी फजर है नॉर्वे में, और इसी तरह नॉर्दर्न इलाकों में। अल्लाह ताला आपको पूरा साल और 24 घंटों का एक एक मिनट नमाज में देखना चाहते हैं पूरे साल के बाद। कितना बड़ा अल्लाह के वजूद का यकीन दिलाएं खुद को कि पूरी रात के बीच में 7-8 घंटे का गैप है, यानी ईशा से फजर के बीच का जो गैप है ये आपका अल्लाह की रहमत से सोने का टाइम है। ये ना हो जाता, नोट कीजिए ना, रात के अंदर 5 नमाजें होती, यानी ईशा से फजर तक 5 होती और फजर से ईशा कुछ भी ना होता कि जाओ करो काम अपने। नहीं चलता। उस अल हकीम को, उस हिकमतों वाले मालिक को पता है कि आपके लिए मेरे लिए क्या बेहतर है। तो फिर आज से कोशिश करेंगे, इस पर एक्टिविटीज बनाइए, फैमिली के साथ बैठकर बात कीजिए, बच्चों को साथ लीजिए, बेटियों को बेटों को साथ लीजिए, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को इस बात को समझने की बड़ी ज़रूरत है कि नमाज वक्त पे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हमें अच्छा ही नहीं लगता कोई बुलाए और आगे से ना बोले, उसको भी नहीं अच्छा लगता, ऐसे लगता है कि ये क्या स्टबननेस है, आवाज़ नहीं आ रही थी, आ रही थी पर मैंने कहा कोई ज़रूरी थोड़ी अभी बुलाऊं, मैं आधे घंटे बाद चली जाऊंगी। इंशाल्लाह अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी है हमने, बिल्कुल। और भी लिखिए, इससे फ़ायदा बहुत होगा, आपका ही फ़ायदा है। यकीन करें जो अव्वल वक्त पे पढ़े नमाज सबसे आसान लगती है। नमाज जितनी डिले करेंगे ना उतनी देर मुश्किल होगी। तो नमाज का वक्त बिल्कुल इब्तदाई वक्त का है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर दूसरी चीज़ इसी हदीस में माँ बाप के साथ नेक सलूक है, जो अल्लाह की बात पे कान धरेगा यानी अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ेगा ना, वो माँ बाप की भी पहली पुकार पे कहेगा जी अब्बा जी अम्मा। आपने हदीस कई दफ़ा सुनी होगी कि 3 लोग जो गार में फंस गए थे और जब कोई रास्ता ना बना तो उन्होंने कहा अपना कोई ऐसा अमल याद करते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो इखलास के साथ। तो उनमें से एक लड़का वो था कि जो सारी रात दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा कि पहले मेरे बूढ़े माँ बाप पी लें फिर बच्चों को दूंगा। तो माँ बाप की आंख लग चुकी थी, बच्चों को नहीं दिया माँ बाप को दिया। अल्लाह को उसका यह अमल इतना अच्छा लगा कि गार में से थोड़ा सा निकलने का रास्ता बना दिया। तो कहिए अल्लाह ताला के रास्ते में नमाज और माँ बाप की बात को फौरी मानने में रब्त है। जब नमाज को पहली दफा में लेंगे ना तो माँ बाप की भी पहली पुकार पे आएंगे। और तीसरी चीज का भी रब देखिए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। चलिए अब इन तीनों का रब देखें। अल्लाह की रिया का जिहाद क्या कि जब जरूरत है तब पहुंचे। दुश्मन आ गया, हमला हो रहा है, फौरन ऐलान हुआ अमीरे लश्कर की तरफ से जल्दी निकलो। कोई जरूरी तो नहीं ना अभी निकलो, थोड़ी देर बाद चला जाऊं तो क्या होगा, क्या फर्ज है अभी निकलना? मुझे बता सकते हैं कि इसमें कोई एक बात भी ऐसी है जो मुझे आपको ना समझ आए? बिल्कुल समझ आ रही है, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है कि चोर घर में आ जाए तो उसी वक्त एक्शन लेना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, उसको हार्ट अटैक हो तो फौरन एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। इस तीनों अमाल को सामने रखकर एक जुमला सुने फिर हम आगे चलते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ना ट्रेनिंग है, माँ बाप की पहली पुकार पे लब्बाई कहने की, और अल्लाह के रास्ते में जब आपकी जरूरत पड़ जाए, जब आप ऑन कॉल हो तो फौरन निकल पड़िए। फिर तकाजे नहीं पूरे करते कि अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया, लेट मी सी, अभी मुझे सूट नहीं करता। और लिख लीजिए 5 वक्त नमाज को वक्त पे पढ़ने वाले की अपनी जिंदगी से ये चीज निकल जाती है कि आपको क्या सूट करता है, मुझे तो नहीं करता। कई दफा आप देखिए कोई डिसीजन कई कई दिन तक हो ही नहीं पाता, कई कई दिन तक ये डिसीजन नहीं हो पाता क्योंकि आज मुझे नहीं सूट कर रहा तो कल आपको नहीं करेगा, सुबह आपको नहीं तो शाम मुझे नहीं। और आप देखिए बड़े बड़े डिसीजंस पोस्टपोन्ड होते हैं और उसका बाद में नुकसान कितना होता है। तो जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले लोग होते हैं ना, ये नमाजों के अंदर ये ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं कि मेरी अपनी बात पीछे है, वो एक सेकेंडरी फेज है, मुझे तो पहली बात में अल्लाह ताला को लेके चलना है। दूसरी हदीस नोट कीजिएगा, आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हाइल है। पिछले सेशन में भी ये हदीस आई थी ना, क्योंकि मुसलमान नमाज पढ़ता है और दूसरी तरफ नमाज का कोई तसव्वुर नहीं है, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है 82। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जितना ज्यादा इंसान नमाज के करीब होगा उतना वो शिर्क से दूर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बास दोस्तियों पर रहमत करने का इरादा फरमाएगा, जरा सा इस पे गौर कीजिएगा, बास दोस्तियों पर, यानी अल्लाह ना करे कि पहले दोजख में जाएं और फिर ये हो, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो चले के अपने किसी बुरे अमल से, अब अल्लाह ताला रहमत करना चाहते हैं कि उनको निकालते हैं। फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो दोजख से ऐसे लोगों को बाहर निकाल लाएं जो अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। फरिश्ते इन्हें निशाने सजदा से पहचान कर दोजख से निकाल देंगे, क्योंकि सजदों की जगहों पर अल्लाह ताला ने दोजख की आग हराम कर दी है, वहां आग का कुछ असर ना होगा। कितनी बड़ी सिक्योरिटी है दुनिया में। आप देखिए फायर प्रूफ, कभी आपने सोचा फलां चीज़ उस पर आग नहीं लगती? वजू के निशान, वजू की जगहों पे आग का असर नहीं होता। इन जगहों को पहचान कर अल्लाह अकबर उनको जहन्नुम से निकाला जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और अगर नमाज ही ना हुई, और आप नोट करें कि इससे एक साइड का मानी भी निकल रहा है कि नमाजें पढ़ने वाले भी किसी बुरे अमल की वजह से आग में जा सकते हैं। दुआ कीजिए ऐसा हमारे साथ कभी ना हो। इसी तरह आपने फरमाया सबसे अफजल अमल अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना है। सबसे अव्वल वक्त पे इब्ने खुजैमा की रिवायत है 327। फिर एक रिवायत में आपने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है, अपने आप को जहन में लाइए, तो अल्लाह ताला की रहमत यानी रहमत इलाही उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। सच बताइए, जब आप अल्लाहु अकबर कहकर जाए नमाज पे खड़े होकर अल्लाह के सामने चले गए, तो आपको ये रहमत महसूस होती है। और ये रिवायत अबू दाऊद की है 945 में। तो अल्लाह की इस रहमत को महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला की ये रहमत आपको अपने बहुत करीब महसूस करेगी। और एक और बड़ी खूबसूरत सी रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अपने बाबरकत और बुलंद कदर परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा। बस इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा है मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने तीन बार पूछा, मैंने हर बार यही जवाब दिया। फिर मैंने अल्लाह ताला को देखा कि इसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह ताला की उंगलियों की ठंडक अपनी छाती के दरमियान महसूस की। फिर मेरे लिए हर चीज जाहिर हो गई, सोचिए जरा, और मैंने सबको पहचान लिया। फिर फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा है मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, कफारात। कफारात यानी गुनाहों का कफारा बनने वाली नेकियों के बारे में। सोच के इस हदीस को, ऐसे वो गूज़बाम होते हैं, क्या वो कैफियत होगी। खैर, अल्लाह ताला ने फरमाया, वो क्या है? मैंने कहा, नमाज़े बाजमात के लिए पैदल चलकर जाना, नमाज के बाद मस्जिदों में बैठना, और मुशक्कत यानी सर्दी या बीमारी वगैरह के वक्त पूरा वुजू करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, और किस चीज़ में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, दर्जात की बुलंदी के बारे में। अल्लाह ताला ने पूछा, वो किन चीज़ों में है? मैंने कहा, लोगों को खाना खिलाने, नरम बात करने, और रात को नमाज पढ़ने में जब के लोग सो रहे हों। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब जो चाहो दुआ करो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, अभी मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, और यकीन कीजिए आज के बाद इस दुआ को अपनी ज़िंदगी से ना निकालिएगा, क्योंकि फितनों का दौर है। اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، اور خاص طور پہ موجودہ بیماری وائرس जो कोरोना फैला हुआ है उस फितने को भी आप जहन में रख सकते हैं। क्या है? ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकियों के करने का, आमीन। बुराइयों के छोड़ने का, आमीन। मिसकीनों के साथ मोहब्बत करने का, आमीन। क्योंकि अक्सर मिसकीनों को लोग दूर भगाते हैं अपने से। और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमाए। अगर तेरा किसी कौम को आजमाइश में डालने का इरादा हो यानी फितने में, तो मुझे आजमाइश से बचाकर मौत दे देना। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और मैं तुझसे वो अमल करने की तौफीक मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये ख्वाब हक है। बस इसे याद रखो और दूसरे लोगों को भी ये ख्वाब सुनाओ। ये तिर्मिजी की रिवायत है, 3235 नंबर की। सही रिवायत है, मुसनद अहमद में भी 243 है। और आप नोट करेंगे कि इस हदीस में कुछ अनयूजल बातें हैं। थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। पहली बात है कि अल्लाह के नबी अल्लाह को देख सकते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए ख्वाब में देख सकते हैं। असल आंखों से नहीं देखा, ना कोई देख सकता है। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया था कि आपने मेराज के मौके पे अल्लाह ताला को देखा, तो आपने फरमाया कैफा, हाउ इज इट, क्योंकि अल्लाह तो एक नूर है। लेकिन ख्वाब में अल्लाह के नबी ने देखा है। पहली बात, इस हदीस में अल्लाह के हाथ और उंगलियों की हैं। हाथ और उंगलियां अल्लाह के लिए साबित हैं, और ये अल्लाह ताला की सिफात हैं। वो कैसी हैं, इनकी कैफियत क्या है, ये आप मैं नहीं जानते। दूसरी बात है कि इनको मखलूक के हाथों और उंगलियों से तशबीह नहीं दे सकते, ये गैब के उमूर में से यूमिनूना बिल गैब है। तो लिहाजा हम अल्लाह की इन सिफात पर भी ईमान बिल गैब रखते हैं। कैफियत बयान नहीं कर सकते, तशबीह बयान नहीं कर सकते, उसकी मिसाल नहीं दे सकते। ठीक है, फिर एक और बात क्या कि ख्वाब के वक्त जमीन आसमान की हर वो चीज़ अल्लाह के नबी ने देखी और पहचान ली जो अल्लाह ताला ने उनको दिखाना चाहिए, ये मुराद है। ये सवाल जवाब का जो अंदाज इस हदीस में है ना, इससे यही मफहूम मिलता है। और एक रिवायत में सिर्फ मशरक और मगरिब का जिक्र है, यानी जनूब और शिमाल का नहीं। अब इस हदीस का ये मतलब नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर लोगों के जन्नत और जहन्नम में दाखिल होने तक के वक्त के हर जमानो मकान की और हर चीज़ और हर राज अल्लाह के नबी को मालूम हो गया। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह के नबी पर तो ख्वाब के बाद वही आनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हर चीज़ तो आपको पहले से मालूम करवा दी गई। नहीं, ये मुराद था कि जो उस वक़्त अल्लाह ने दिखाना चाहा वो दिखाया, और आप तो हर वक़्त वही का इंतज़ार करते थे। फिर आपने इसमें जो खूबसूरत चीज़ देखी है कि वो लोग जो नमाजों का इंतज़ार करते हैं, फरिश्ते उनकी नेकियां लिखने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप देखिए कि पिछली हदीस में जो बुखारी की 806 थी कि दोजख में से निकालने के लिए अल्लाह रहमत करेंगे तो सजदों के निशानों से पहचानेंगे, इससे क्या सीखा? ज़मीन पर अपने सजदों के निशान लगाइए, मुख्तलिफ जगहों पर नमाज पढ़ा करें और लंबे सजदे किया करें। गाड़ी में है तो इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि गाड़ी के टायर जहाँ जहाँ से गुजर रहे होंगे वहाँ वहाँ, अगर आप उस वक्त नफिल पढ़ रहे हैं, आप कोई सुन्नत अदा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ भी अल्लाह अपनी रहमत से आपके सजदों के निशान दे सकते हैं। फिर दूसरी बात जो इस हदीस में हमने देखी है, ख्वाब और अल्लाह ताला से मुलाकात अल्लाह के नबी की, तो इससे क्या पता चला कि गुनाहों का कफारा बनने वाली नेकियाँ करनी चाहिए। क्या आपको मुझे नहीं ज़रूरत? हर लम्हे तो हम इस चीज़ के मुकल्लफ हैं, तो इसलिए ज़रूरत है। और तिर्मिजी की ये रिवायत जो 3235 थी, इसकी रोशनी में क्या तीन चीज़ें हमने देखी हैं, दोहरा लें। नमाज़े बाजमात के लिए पैदल चल कर जाना, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो पैदल जाते हैं, हमें तो उन पर रहमत है। हाय थक जाएंगे, हाय गर्मी है, हाय सर्दी है, हाय इतनी वॉक, लेकिन अल्लाह उनके कफारात बनाता है। जिधर जाना होता है ना बंदा, उधर बड़े आराम से और शौक से पहुंच जाता है, उसको कोई नहीं महसूस होता। कभी आपके घर में भी कोई ऐसा होगा, आपके शौहर हो सकते हैं, आपका बेटा कोई हो सकता है, जिसको इतना शौक है कि गाड़ी मिले ना मिले, कोई साथी मिले ना मिले, वो पैदल चल पड़ेगा। उसको जरा सा डाउट होना कि दूसरे बंदे ने देर कर देनी है या एन टाइम पे मैं नहीं जा पाऊंगा, वो वक्त से पहले चल पड़ता है, कफारात है। फिर नमाज के बाद मस्जिदों में बैठना, पूछिए अपने आप को आज हमारे घरों में कितने लोग हैं, या हम सब में से कितनों के घरों में से कोई एक फर्द भी मस्जिद में बैठा रहे। आपको क्या पता कि आपके मर्द मस्जिद में एक्स्ट्रा टाइम जो बैठते हैं वो आपके लिए कितना बड़ा सदका जारिया बन रहा हो। आपने उनको खिलाया पिलाया, आपने उनके लिए घर कपड़े मुहैया किए, तो औरतों बेटियों माओं बहनों के लिए ये बड़ी खुशबख्ती है कि उनके मर्दों के दिल मस्जिदों में लग जाए। देखिए, दुनिया में दिल लगना ये क्या बात है, बीवी में दिल लगना ये तो एक आम बात है, शौहर के गिर्द घूमते रहना ये तो आम बात है, खाने पकाने और चूल्हे के गिर्द चक्कर लगते रहना ये तो हमारी ख्वातीन की आदत है। लेकिन ये जो बात है कि मस्जिदों में बैठना, आज क्या ये पीछे नहीं होती जा रही? वो नौजवान जिसका मस्जिद में दिल लगा जाए वो अल्लाह के अर्श के साए में, तो अभी यहाँ बैठकर इल्म की इस महफिल में दुआ कीजिए। अल्लाह हमारे बेटों के दिल मस्जिदों से जोड़ दे, अल्लाह हमारे शौहरों के दिल मस्जिदों से जोड़ दे, अल्लाह हमारे भाइयों और भाइयों की औलादों और हमारी बहनों के शौहरों और उनके बच्चों के दिल मस्जिदों से जोड़ दे। अपने बेटों में से एक पे कम से कम आप मेहनत करें, देखिएगा वो एक दूसरों को भी ले जाएगा। आज वो माएं चाहिए जो ऐसे लोग तैयार करें। और याद रखिए, लोग कहेंगे लोग मस्जिद में बैठे रहेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, ये लॉकडाउन है, कंप्यूटर पे काम करते हैं ना मियाँ, मस्जिद में ले जाएं। हमारे अपने घर की बात है, जोहर से मगरिब और अक्सर फिर ईशा भी मस्जिद में गुजारते हैं, अपना कंप्यूटर साथ रख लिया, वहां बैठे रहे, माहौल का बड़ा प्यारा असर होता है। और ये डर के बार बार आना जाना मुश्किल हो या कोई जाए ना जाए, मैं वहीं बैठ जाऊं। इबादत की इबादत, काम का काम, ये है नूर नला नूर। तो अपने बेटों को कम से कम इस पे रेस कीजिए। दिल किधर लगता है औरतों का बाजारों में, पता ही नहीं चलता 4-5 घंटे पाँव सूजे में, लेकिन वो चीजों में इतनी मगन है, घर आके पता लगेगा, फिर पट्टियां बांधेंगी पाँव पे, वहां नहीं पता चलता। तो जिनके दिल अल्लाह से जुड़ जाते हैं ना, फिर उनके दिल वहां लगते हैं और उनको बुरा नहीं लगता। फिर आप देखिए कि मुशक्कत, जिसमें सर्दी भी है, बारिश भी है, बीमारी है, इसके वक्त पूरा वुजू करना, यानी ये नहीं कि कोनियां सूखी और एड़ियां सूखी और अब मैं स्काफ कैसे उतारू, मैंने तो 10 पिन्ने लगाई थी, नहीं ये भी नहीं है। और आप देखेंगे कि जितना ज्यादा इस चीज पे आप गौर व फिक्र करते जाएंगे, आपका दिल खुलता जाएगा। चले ये तो कफारात है, तो फिर इसमें दर्जात की बुलंदी के कौन से काम हुए, लोगों को खाना खिलाना, नरम बात करना, और रात को नमाज पढ़ना जब लोग सो रहे हों, फरिश्तों की बहस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, क्या खूबसूरत चीजें हमने इसमें पढ़ ली। शायद आपने तो पढ़ने या सुनने में इतना गौर ही ना किया जितना हम इस रिकैप में गौर करें। और फिर ये जो दुआ हमने सीखी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका फ़ेलल खैराती व तरकल मुनकराती, यकीन करें इनको अपनी जान बना लें, हिर्ज़े जान मोटा मोटा लिख कर इसको अलग से अपने पास रख लें। इसी से इंशाल्लाह नेकियों की मोहब्बत आएगी, फेल अल खैरात। कभी आपका दिल पीछे हट रहा है ना किसी नेकी से, बस बहुत कर ली, थक गई, अब नहीं होती, बहुत वक्त ये वो, नहीं, दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फेल अल खैरात, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फेल अल खैरात, ए अल्लाह मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि मुझे नेक काम करने का शौक लग जाए, और अगर लगा हुआ तो ये बाकी रहे, बतरकल मुनकरात, मैं मुनकरात में ना पढ़ू, अगर पढ़ी हुई है तो छोड़ दूं, अगर मुझे अपना टाइम वेस्ट करने की आदत है तो अल्लाह उससे मुझे छुड़ा, टाइम वेस्टर्स निकाल, लग्व निकाल दे मेरी जिंदगी से, मुझे बेकार लग्वियात देखने सुनने और इन सारी चीजों से महफूज रख ले, और फिर मुझे माफ भी कर, मुझ पर रहम कर। और ये जो बात है ना, किसी कौम को आजमाने का तो इरादा करे तो मुझे उसमें ना आजमाना। आज आप देखिए कितनी आजमाइशें हैं दुनिया में, क्या आपकी मेरी ये मांगी हुई दुआएं बेकार जा सकती हैं? कभी भी नहीं। तो इंशाल्लाह ये दुआएं मांगते रहेंगे, और आप देखिए अल्लाह की मोहब्बत, उसकी मोहब्बत जो अल्लाह से मोहब्बत करे, और उस अमल की मोहब्बत जो अल्लाह ताला की मोहब्बत के करीब कर दे आपको। आप इतनी बड़ी बातें सुन रहे हैं कि आपके दिल में इससे और ज्यादा शौक नहीं आ रहा, अल्लाह की मोहब्बत की बात नहीं हो रही, यकीनन आ रहा होगा। ये कैसे हो सकता है कि हम इतनी प्यारी बातें सुने और पढ़ें और हमें अल्लाह पे प्यार ना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे प्यार ना आए, जिनके जरिए आपको मुझे ये बातें मिली। और हम ऐसे तो सख्त दिल नहीं है, सिर्फ ये है कि हम तवज्जो कम करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, हम इन चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेते, बस नमाज भी पढ़नी है तुम्हारी भांति, ना पढ़ी तो फिर वो भी तो सुन लिया ना अब के, फिर ये तो वो, नहीं। दुआ करें आप, पूरी सीरीज के बाद हमने मोहब्बत करनी है नमाज से, फर्ज समझ के बोझ नहीं समझना, वो तो हम कर ही रहे हैं पहले से, पढ़ तो हम पहले से रहे थे, टालना नहीं है, हमने नमाज से इतना प्यार करना है जितना हमें घर से प्यार है। हम नमाज को सजाएंगे जैसे हम अपने कपड़े सजाते हैं, और इसी तरह दिल नमाजों में। और आप मेरे लिए सबसे ज्यादा दुआ करें, मैं आपके लिए भी करती हूँ, कि अल्लाह हम सब के दिलों में इस नमाज की मोहब्बत कूट कूट के भर दे, इतनी भर दे हमें सबसे प्यारी लगे। फिर एक और हदीस लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत और जिम्मे में है। अल्लाह अकबर, बस अल्लाह ताला तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज का मुतालबा न करे, इसलिए कि जिससे वो ये मुतालबा करेगा यकीनन इसे अपनी गिरफ्त में लेकर मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी बात है। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है 657। अभी इस पे बात करते हैं हम लोग, बस इतना समझ लीजिए कि मुतालबे का मतलब या तो नमाज में कोताही पर मुतालबा है, या फिर मुआखजा इलाही, अल्लाह की पकड़ से डरना, और फजर की नमाज पढ़ने वाले से तारुद करने की सूरत क्या है, कि मुतालबे और अल्लाह की पकड़ से डरने की कैफियत हो जाए। क्या पता चला कि जब एक बंदा फजर की नमाज को अल्लाह के सामने खड़े होने की दलील बना लेता है, और आप देखिए कि ये जो अबू दाऊद की रिवायत 945 है कि जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है, क्या आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं? कितना प्यारा ऐसा लगता है, आपने कहा अल्लाहु अकबर, किबला रुख, और किबले की तरफ से अल्लाह की रहमत कहती है अब मैं भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करती हूँ, मुतकाबिलीन, फेस टू फेस। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसमें ये जो बात है कि हिफाजत और जिम्मा, यही इंश्योरेंस है, यही सेफ्टी गार्ड है। हमें जरासीमों से, हादसों से, चोरियों से, बीमारियों से बचाना है तो अल्लाह ताला की शान से, अल्लाह की रहमत ने बचाना है। और एक बड़ी प्यारी रिवायत जिससे आपको नमाज की अहमियत और भी वाज़ेह होगी, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से ये रिवायत है, आपने फरमाया, अम्मनी जिब्रील अलैहि सलाम इंदल बैति मर्रतैन, जिब्राइल अलैहि सलाम ने खाना काबा के पास मेरी 2 दफा इमामत कराई। सुभान अल्लाह, 2 दफा इमामत कराई। आगे हम पढ़ेंगे नमाजों के औकात में ये अमल हुआ था जब आप मेराज से वापस आए थे, एक दिन आपको इब्तदाई वक्तों पे और दूसरे दिन इंतहाई वक्तों पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई थी, और यही कहा था कि आपकी उम्मत के लिए नमाजों के औकात यही हैं। यह अबू दाऊद की रिवायत है 393। अब इमामत जिब्रील की इस हदीस से क्या पता चला? नंबर एक, नमाज का दर्जा इतना बुलंद, इसकी अहमियत अल्लाह ताला के यहाँ इतनी आला और अरफा, और इसे एक खास तरीके से मुकर्रर करदा कायदे और जाब्ते के तहत और खुशू और खुदू से अदा करना इतना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने तालीम उम्मत के लिए जिब्राइल को हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के नबी को नमाज की कैफियत सिखाई, हैयत सिखाई, इसके औकात बताए, उसके कायदे सिखाए, और फिर आप जिब्राइल के बताए हुए और सिखलाए हुए वक्तों, तरीकों, कायदों और जाब्तों के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे, और उम्मत को भी यही हुक्म दिया कि सल्लु कमा रई तुमोनी उसली। देखिए, राई तू का लफ्ज़ बता रहा है कि देखेंगे ना किसी को सही नमाज पढ़ते फिर सही पढ़ेंगे, खाली किताबों में इवन पढ़ के भी तरीका समझ नहीं आता। और सहाबा कितने खुशकिस्मत थे कि वो अल्लाह के नबी को दिन रात देखते थे नमाज पढ़ते हुए, तो फिर उनका तरीका कितना खूबसूरत होगा। और अल्लाह ताला आपको मुझे भी सुन्नत तरीके पे नमाज अदा करने की तौफीक दे। ये सही बुखारी की रिवायत 631 थी। क्या सीखा आपने? मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ये पता चला, नमाज आम आमाल से बहुत ऊंचा अमल है। आप देखिए कि पूरी शरीयत ज़मीन पे दी गई और नमाज मेराज के मौके पे आसमानों पे जाकर फर्ज की गई। आप बड़े यकीन से लिख सकते हैं कि शरीयत का सबसे आला अमल आसमानों पे जाके सिखाया गया। एक और जुमला लिख लीजिए कि नबी की मेराज, और मेराज कहते हैं उरूज को, बुलंदी, नबी की मेराज आसमानों पे जाकर करवाई गई। एक उम्मती मेराज कर लेता है जबकि नमाज पढ़ता है, यानी वो सारे जहां से बेनियाज होके अल्लाह ताला के साथ लगता है। तो क्या सीखा? कि नमाज का दर्जा अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा है। कैसे? मतलब इसी हदीस से देखिए, पहली बात है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमामत कराई, नहायत खुशी और खुदू से इस नमाज को अदा करना जरूरी है, फिर मुकर्रा कायदों और जाब्तों पर अदा करना जरूरी है, फिर इसकी एक मखसूस हैयत और कैफियत है, और अल्लाह ताला के नजदीक बहुत आला और अरफा मुकाम है। और ये सारा कुछ बताकर आपने हमें भी ये बता दिया कि नमाजों को ठीक करो। क्या अमल की बात है? पहली बात, अब यहाँ एक किस्म का नमाज का ये मौजू पूरा हो रहा है क्योंकि अब इसके बाद हम तहारत के मौजू पे चलेंगे जो कि नमाज की शर्त है। लेकिन अभी तक क्या सीखा? कि नमाज को इसके अव्वल वक्त में अदा करना है क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक वो सबसे अफसल नमाज है जो कि वक्त पे अदा की जाए। फिर आपके मेरे सीखने की बातें, नंबर एक, अगर आप माएँ हैं, घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, फूफियाँ हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, तो घर के बच्चों को बताइए कि दीन और दुनिया की कामयाबी नमाज में है। ये जो छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाते रहते हैं ना तोतली तोतली बातें, साथ उनको नमाज की भी बातें सिखा दीजिए कि बेटा नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्या है। तो आज से आप अपने लिए ये गोल बनाएं कि मैंने अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े होते, ग्रोइंग बच्चे, इवन 7 8 9 10 साल के बच्चे, भांजे, भतीजे, भतीजियाँ, अपने बच्चे, कहीं और फैमिली में किसी के साथ रहते हैं, उनके बच्चे, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। आप कहीं जाते हैं स्कूल में, वहां आपके पास बच्चे आते हैं, 15-20 मिनट आप उनको अलग बिठा कर नमाज की बातें कर लीजिए। हमसायों के गली मोहल्ले के 2-4 बच्चों को दिन में 15 मिनट के लिए जमा करके थोड़ी थोड़ी बात नमाज की कीजिए। फिर दूसरी बात क्या कि नमाज को अव्वल वक्त पर अदा करने का एहतमाम करना है। आज नियत करते हैं, जिधर अजान हो गई वहां चूल्हा बंद, गाड़ी रुक गई, और कोई अचानक तो होती नहीं, हमें तो अगले भी 5 साल की नमाजों के वक्त अभी पता लग सकते हैं नेट से। अपनी घड़ियों को, जागने और सोने को हमने अव्वल वक्त की नमाज के साथ जोड़ना है इंशाल्लाह। तीसरी चीज क्या कि नमाज की अदायगी में खुशू और खुदू का ध्यान रखना है। ये नहीं कि बस दिल दिमाग कहीं और है, सोच नहीं रहे, जिमाइयां ले रहे हैं, इतने थक गए, नहीं अब बस मैं जाग रहा हूं, अब मैं नमाज पढ़ के ही सोऊंगा। और ऐसी वो नमाज होती है कि अल्लाह की बना जरा सी आंखें बंद हो तो हो सकता है एक बीच में नींद का झोंका भी आ जाए। ऐसा नहीं करना। और यार रात ईशा इतनी लेट कर दी, इतनी लेट कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, कि पता क्या चला कि नमाज का वक्त होके, यानी जब गुजर भी चुके और आप ईशा पढ़ रहे हैं, वक्त पे पढ़िए। मोहब्बत का तकाजा है, रिस्पेक्ट का तकाजा है। फिर अगली चीज जो हम खास तौर पे मर्दों और भाइयों के लिए कहेंगे कि बाजमात नमाज मस्जिद में पढ़ने का एहतमाम करना। फिर इसी तरह एक और आदत डालिए, तहज्जुद की आदत डालनी है इंशाल्लाह। रात की घड़ियों में थोड़ा वक्त अल्लाह के साथ बातचीत कर लीजिए, इससे प्यारा कॉन्वर्सेशन का वक्त और मीटिंग टाइम तो कोई हो नहीं सकता। थोड़ी सी रात को बात करेंगे, पूरी दिन जुबान सीधी रहेगी, क्योंकि या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीला। और फिर अल्लाह के करीब करने वाले आमाल की मोहब्बत का सवाल करना है। ये कहाँ से सीखा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ेलल खैरात व तरकल मुनकरात। आदत बना ली, अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा बस ये दुआ पढ़ते रहा करो, अल्लाह मुझे नेकियों की मोहब्बत दे और गुनाहों से मुझे दूर कर दे।